بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں، جن کی رحمت سب کے لیے ہیں، جو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. جب زمین اپنے زلزلے یعنی دھرتی کمپ سے خوب ہلائی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ یعنی اندر جو دفن کی ہوئی چیزیں ہیں اور مردے کو باہر نکال دے گی، اور انسان کہنے لگے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا، اس روز زمین اپنی ساری باتیں اور خبریں بتا دے گی، اس لیے کہ تمہارے رب نے اس کو یہی حکم دیا ہوگا. اس دن لوگ الگ الگ جماعت بن کر واپس ہوں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. سو جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کا بدلہ دیکھ لے گا، اور جس شخص نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کی سزا دیکھ لے گا. اس سورت کا نام اذا زلزلت الارض زلزالها ہم بولتے ہیں، ایسے اس کا نام ہے سورۃ الزلزال، اور یہ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے. بعض نے اس کو مکی سورت بھی کہا، اس میں 8 آیتیں ہیں. سورہ نساء کے بعد سورہ حدیث سے پہلے 93 یا 94 نمبر پر نازل ہوئی ہے. اس سورت کی شروعات ہی میں قیامت کے دن پیش آنے والے قیامت کے موقع پر پیش آنے والے زلزلوں کا تذکرہ ہے. زلزلے کا مطلب ہوتا ہے زمین کا ہل جانا، اور اس میں جو حروف مقرر یعنی ڈبل ڈبل آئے ہیں اس کا معنی نکلتا ہے بار بار ہلانا. ایک حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ اذا زلزلت کی سورت پڑھے تو آدھے قرآن جتنا اس کو ثواب ملتا ہے، یعنی 15 سپارے پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اس لیے اہتمام کرو یہ سورت کو بھی پڑھنے کا. بعض حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ چوتھائی قرآن کا ثواب ملتا ہے، یعنی تقریباً 7.5 سپارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. دیکھو یہ جو چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں جس میں زیادہ فضیلت والے، سورہ زلزال، سورہ الحاکم التکاثر، سورہ قل ہو اللہ، ایسی سورتوں کو نفل نمازوں میں پڑھا کرو تو بڑا بڑا ثواب انشاءاللہ ملتا رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد جو 2 رکعت نفل بیٹھ کر ادا فرماتے تھے، تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اذا زلزلت، اور دوسری رکعت میں الحمدو کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے. لو آپ کو ایک سنت بھی بتلا دی کہ وتر کے بعد 2 رکعت نفل جو پڑھتے ہیں اس کی پہلی رکعت میں اذا زلزلت پڑھو اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھو. یہ پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، लिहाजा हमें इसको मामूल बना लेना चाहिए। अब जरा इस सूरत को समझो, बड़ी ऊंची ऊंची और अहम अहम बातें हैं इसके अंदर। मक्का के अंदर जो मुशरिकीन थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कयामत के बारे में पूछते रहते थे। ये भी एक मजाक बनाई थी उन्होंने, वरना वो कयामत को मानते थोड़े ही थे, वो तो कयामत का इनकार करते थे। लेकिन कयामत के बारे में ये लोग आकर के हुजूर को सवाल करते थे। एक मौके पर इन्होंने सवाल किया, यसअलूनका अनिस्साअति अय्यान मुरसाहा। ये काफिर लोग आपसे सवाल करते हैं कि कयामत कब आएगी। बार बार आते थे, बार बार सवाल करते रहते थे। जब भी मौका मिला तो कोई बहाना करके कयामत का सवाल करने के लिए आते थे। आज भी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी जमात लोगों की ऐसी है जिनका टॉपिक है कयामत के बारे में सवाल करना। लेकिन अजीब बात, कयामत अल्लाह ताला ने कब आएगी किसी को नहीं बतलाया। नबी को भी मालूम नहीं, फरिश्तों को भी मालूम नहीं, यहाँ तक के जो फरिश्ता सूर फूंकने वाले हैं कयामत का, हजरत इसराफील, उनको भी मालूम नहीं है कि कयामत कब आने वाली है। वो टाइम सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। और हुजूर के खानदान वाले कुरेशी काफिर तो कभी कभी आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी रिश्तेदारी बतला कर कहते थे कि अपनी और तुम्हारी फैमिली एक है, अपने कुरेशी लोग, रिश्तेदार लोग, हमको तो खानगी में बता दो कि ये कयामत कब आने वाली है। जैसे कि ऐसी प्राइवेसी वाली खानगी बातें दोस्त दोस्त को पूछते हैं, इस तरह ये लोग भी इस तरह के सवाल करते थे। लेकिन कुरान के अंदर एक जगह पर पांच चीजें एक साथ बयान की गई कि अल्लाह के अलावा किसी के पास उसका नॉलेज, इल्म, जानकारी नहीं है। उसमें पहले नंबर पर फरमाया, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, कयामत कब आएगी उसका इल्म, उसकी जानकारी सिर्फ अल्लाह के पास है। अरे जिब्राइल अमीन को भी मालूम नहीं है, जिब्राइल को भी मालूम नहीं, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मालूम नहीं। अब एक बात और समझो, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आदत ये थी कि अगर रात के वक्त में कुरान की कोई आयत उतरी, कोई सूरत अल्लाह के यहाँ से आई, तो हुजूर रातों रात सहाबा को बुलाते नहीं थे, बल्कि सुबह का इंतजार फरमाते थे। जब सुबह होती और सहाबा आते तो रात में जो कुरान की आयत उतरी वो हुजूर सहाबा को सुनाते थे। ये आम आदत मुबारक थी। इससे हमको एक जिंदगी का बेहतरीन तरीका सीखने को मिलता है कि भाई मामूली मामूली बात के लिए लोगों को आधी रात में नींद में से उठाना नहीं चाहिए। कोई इमरजेंसी बात है तो समझे, बाकी आज लोगों का मिजाज भी बिगड़ गया। मामूली बात ने भी रात 2 बजे 1:30 बजे नींद में डिस्टर्ब करते हैं, बाद में कुछ सवाद नहीं होता और लोगों को तकलीफ देते हैं, ये गलत तरीका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी। लेकिन जब ये सूरह इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ ज़िलज़ालहा उतरी, रात का वक्त था, रात का कुछ हिस्सा गुजर चुका था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह का इंतजार नहीं किया, उसी वक्त घर से बाहर तशरीफ लाए और सहाबाए किराम के सामने ये सूरत पढ़ करके हुजूर ने सुना दी। इससे अंदाजा लगाओ कि ये सूरत कितनी अहम होगी कि रात में उतरी और हुजूर ने रात ही में सहाबा को बतला भी दी, सुना भी दी। और इस सूरत की जो आखिरी आयत है ना, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ। ये जो अखीर वाली दो आयतें हैं, ये आयतों के बारे में यूं कहा जाता है कि الْجَامِعَةُ الْخَاذَّةُ, एक जामे आयत, यक्ता आयत, यानी अपने अंदर समंदर और दरिया होवे, ऐसी ये अजीबो गरीब अखीरी आयतें हैं। अब जरा धरती कम समझो, कयामत के दिन वाला जो इस सूरत में बयान किया गया। देखो, आज जो दुनिया में धरती कंप आते हैं तो वो एरिया वाइज होते हैं, इलाके के होते हैं। एक शहर में आया, उसके आजू बाजू में आया, तो जब वो धरती कंप आता है तो दूर वालों को पता भी नहीं चलता है। जैसे एग्जांपल, अभी एक हफ्ते पहले दिल्ली में धरती कंप हुआ, 2 दिन हुआ, ऐसा पेपर में आपने भी पढ़ा होगा, अखबार में, लेकिन अपने यहाँ किसी को पता भी नहीं चला वो धरती कंप का। तो दुनिया में किसी जगह के ऊपर धरती कंप आता है, जलजला आता है, तो एरिया वाइज होता है, किसी इलाके में होता है, किसी शहर में होता है। दूसरी जगह वाले तो जब न्यूज में, खबर में पढ़ते सुनते हैं तो पता चलता है, लेकिन ये कयामत के दिन जो जलजला आएगा वो इतना खतरनाक होगा, ग्लोबल, वर्ल्ड वाइड, आलमी, पूरे जगत, पूरी दुनिया के अंदर ये धरती कंप होगा और पूरी दुनिया को वो हिला डालेगा। इसीलिए कुरान ने फरमाया, इन ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, कयामत का धरती कम, कयामत का भौचाल और जलजला बहुत जबरदस्त और बहुत बड़ा है। अब यहाँ आयत के अंदर जो फरमाया गया है, तो इसमें दोनों तरह के जलजले मुराद हो सकते हैं। जब ये दुनिया का आखिरी दिन होगा तो अल्लाह के एक बहुत बड़े फरिश्ते हजरत इसराफील अलैहि सलातु वसलाम सूर लेके आएंगे। और ये सूर कैसा होगा? जैसे कि वो बैंड बाजे वालों का जो बड़ा बाजा होता है ना, ऐसा बड़ा सूर होगा, और वो उसमें फूंक मारेंगे तो धीरे 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 उसकी आवाज निकलेगी, यानी एकदम जोर से एक साथ आवाज ही निकलेगी। पहले आहिस्ता, फिर थोड़ी ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, ऐसा, यानी धीरे 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 वो पिकअप पकड़ेगा, धीरे 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 उसकी आवाज बड़ी होगी, यहाँ तक के उसकी आवाज धीरे धीरे इतनी बड़ी हो जाएगी कि तमाम इंसान मर जाएंगे, तमाम जिन्नात मर जाएंगे, तमाम जानवर मर जाएंगे, और उस भयानक आवाज की वजह से पूरी जमीन में जलजला आ जाएगा और सब दुनिया खत्म हो जाएगी, यहाँ तक के फरिश्ते भी खत्म हो जाएंगे। और रिवायतों से पता चलता है कि उस पहले सूर के आने से पहले एक धरती कंप जमीन के अंदर और होगा, और उस धरती कंप के जरिए से जमीन के अंदर से सारे खजाने बाहर निकल आएंगे। जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी कीमती कीमती चीजें रखी है। ये जमीन को जब से अल्लाह ने पैदा किया या बाद में, वो अल्लाह ही जानते हैं। जमीन में सोना है, चांदी है, हीरे मोती है, पेट्रोल है, पता नहीं प्लेटिनम और कैसी कैसी धातु और खजाने हैं, क्रूड ऑयल है, तो सब इस वक्त जमीन के अंदर है और उसी को हम माइंस, कान और खान के जरिए से हम लोग निकालते हैं। तभी दुनिया वालों ने जितना निकाला ने आज तक, उससे तो कई गुना ज्यादा अभी अंदर है, ऐसा हमारा अंदाजा है। तो हदीस से ये पता चलता है कि जमीन अपने जिगर के टुकड़े सोने की बड़ी बड़ी चट्टान की शक्ल में बाहर निकालेगी। और उस वक्त एक आदमी जिसने माल के लिए किसी को कत्ल किया था, वो देख करके कहेगा, अरे अरे ये माल, ये सोना जिसके लिए मैंने इतना बड़ा गुनाह किया किसी को मार डालने का, किसी ने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक काट डाला माल की वजह से, तो वो भी यही कहेगा कि अरे अरे ये सोना जिसके लिए मैंने रिश्तेदार का ताल्लुक तोड़ दिया। चोर जिसका हाथ चोरी की सजा में काटा गया था, वो भी यूं कहेगा कि अरे इस माल के लिए मैंने अपना हाथ कटवाया था, और कोई उस सोने को लेने वाला मौजूद नहीं होगा। इतना बड़ा सोना चांदी कीमती दौलतें जमीन से निकली हुई होगी, इधर उधर पड़ी होगी, रवड़ती होगी, लेकिन कोई उसको लेने वाला नहीं होगा। फिर पहले सूर के बाद 40 साल गुजर जाएंगे, फिर अल्लाह ताला दोबारा इंसानों को जिंदा करेंगे, पहले फरिश्ते इसराफिल को, फिर तमाम फरिश्तों को, और फिर जमीन के अंदर एक बड़ा जलजला आएगा। तो हजरत जिब्राइल इसराफिल अलैहिस्सलाम दूसरी मर्तबा जब सूर फूकेंगे, फिर एक बड़ा जलजला आएगा, और इतना खतरनाक जलजला आएगा कि सारी जमीन उलट पुलट हो जाएगी, सारी जमीन ऊपर नीचे हो जाएगी, और जमीन के अंदर जो कुछ है वो सब बाहर आ जाएगा। उसी की तरफ बारी ताला फरमाते हैं, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा वाख़रजतिल अर्दु अथ्क़ालहा, जमीन अपने बोझ को, अपने भार को बाहर निकाल देगी। ये जमीन के अंदर बोझ क्या है, भार क्या है, उसको समझो ध्यान से। जब से इस दुनिया के अंदर इंसान आया, जिन्नात आए, उनकी मौत हुई, उनको जमीन में दफन किया गया, तो अंदाजा लगाओ कि आज तक कितने इंसान, कितने जिन्नात, बल्कि जानवर भी जमीन में दफन किए गए। तो जितने मुर्दे आज तक जमीन में दफन किए गए, वो तमाम मुर्दे कयामत के दिन जमीन से बाहर निकाले जाएंगे और नई जिंदगी शुरू होगी। और दूसरी रिवायतों से ये भी पता चलता है कि कयामत के दिन ये सोने चांदी, दूसरे सूर के दिन ये सोने चांदी तांबा पीतल ये खजाने भी बाहर निकलेंगे। और दोनों बात मुमकिन है कि पहली मर्तबा सूर फूंका गया था, उससे पहले भी सोना चांदी निकला था, और दूसरी मर्तबा सूर फूंके जाने के बाद भी सोना चांदी हीरे मोती जमीन से निकलेंगे। ये दोनों बात पॉसिबल है। यूं भी हो सकता है कि पहली मर्तबा जब दुनिया अभी वाली चालू है, उसके अखीरी दिनों में धरती कम की वजह से सोना चांदी सब बाहर निकल गया था, लेकिन कोई उसको लेने वाला नहीं, तो पड़े पड़े उसके ऊपर मिट्टी आ चुकी होगी, और दूसरी मर्तबा के सूर की वजह से वो मिट्टी साफ होगी, और दोबारा वो सोना चांदी हीरे मोती एकदम साफ लोगों के सामने आ जाएंगे। ऐसा होने वाला है। अब ये हैं कि अल्लाह ताला ये सब चीज़ बाहर क्यों निकालेंगे। अल्लाह की हिकमत तो अल्लाह जाने, लेकिन हजरत मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह दिखाना चाहते हैं माल की मोहब्बत वालों को, जिन लोगों के दिलों में माल की मोहब्बत है, जो माल के लालची लोग हैं, उनको अल्लाह दिखाना चाहते हैं कि देखो तुम्हारे दिल के अंदर जिस माल की मोहब्बत है ना, वो माल तो इतनी बेकार चीज है कि इस दुनिया के आखिरी दिनों में कोई उसको लेने वाला नहीं होगा, कयामत के मैदान में कोई उसको लेने वाला नहीं होगा। बल्कि हजरत मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के जाहिर होने के जमाने की जो हदीसें हैं, उन हदीसों में ये भी है कि लोग अपना सदका ज़कात खैरात लेकर के निकलेंगे, लेकिन कोई लेने वाला नहीं होगा। जहाँ भी जाएंगे तो वो लोग कहेंगे भाई हमको ज़रूरत नहीं, हमारी ज़रूरत पूरी हो गई, हमको ज़रूरत नहीं, हमारी ज़रूरत पूरी हो गई। ऐसा ज़माना आएगा हजरत मेहदी के ज़माने के अंदर। तो ये माल की मोहब्बत वालों को अल्लाह ताला तंबीह फरमा रहे हैं कि देखो तुम लोग माल के पीछे खामोखा दीवाने बने हुए हो, इसी दुनिया के आखिरी दिनों में ऐसा वक्त आने वाला है कि तमाम इंसान के सामने सारी दुनिया में सोना चांदी हीरे पड़े होंगे, लेकिन कोई लेने वाला नहीं होगा। कयामत के दिन भी ये सब पड़ा हुआ होगा, लेकिन कोई हाथ लगाने वाला नहीं होगा। लिहाजा तुम अपने दिल से माल की मोहब्बत निकाल दो। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। ये हाल जो है होने वाला है। अब जब जमीन के अंदर ऐसा होगा तो इंसान हैरान हो जाएगा और क्या कहेगा, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। इंसान बोलेगा अरे ये धरती को, ये जमीन को, ये पृथ्वी को क्या हो गया कि सारे खजाने बाहर निकाल रही है, क्या हो गया इसको। जैसे कि कोई अनोखा काम करे तो हम पूछते हैं कि भाई दिमाग तो ठिकाने हैं, पावली तो छटक नहीं गई, ये क्या तू नए नए और बेढंगे काम करने बैठा। तो जमीन जब ये करेगी, उसके अंदर से खजाने बाहर आएंगे, तो इंसान कहेगा वकाल इंसानु मालहा, अरे इस जमीन को क्या हो गया कि वो सारे खजाने बाहर निकाल रही है। इंसान ताज्जुब के मारे सवाल करेगा وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها। हाँ उस कयामत के दिन क्या होगा, जमीन बोलना चालू करेगी। अब जहां एक तो बात जरा रुक करके समझ लो, माल दौलत दुनिया की मोहब्बत से अल्लाह ताला हमारे दिलों को पाक कर दे रहे हैं। जरूरत की चीज जरूरत जितनी होनी चाहिए और जो है उसकी नापाक मोहब्बत दिल में नहीं आनी चाहिए। मैं आपको एक बात सवाल करूं, क्या रुपयों के जरिए, पाउंड के जरिए, डॉलर के जरिए, सोने के जरिए, चांदी के जरिए आदमी अपनी भूख मिटा सकता है? सवाल है मेरा आपको, बोलो कि अगर आदमी भूखा है और सामने प्लेट भर के सोना रखा है तो क्या खाएगा उसको? भूखे प्यासे के सामने चांदी रखी तो क्या पिएगा उसको? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। एक आदमी नंगा है तो क्या वो सोने को पहनेगा, चांदी को पहनेगा? नहीं नहीं। ये तो अल्लाह ताला ने दुनिया में एक जरिया बनाया है, सोने के जरिए खाने की जरूरत पूरी करो, चांदी के जरिए कपड़े की जरूरत पूरी करो। ये तो जरूरत पूरी करने का एक जरिया है। और ये माल जो है ना, सोना चांदी रुपये पैसे, उसमें बहुत कमजोरियां हैं, बहुत कमियां हैं, बहुत ऐब है। आप सोचो, एक आदमी जंगल में गया, पूरी थैली भर करके पैसे लेकर के गया। अब जंगल के अंदर उसको जो है भूख लगी, तो क्या वो पैसे को खाएगा? इसीलिए बाज मरतबा आदमी गुस्से में बोलता, क्या पैसे खा जाऊं मैं तेरे? तो हकीकत यही है कि इंसान को खाने के काम में ये माल दौलत आती नहीं है। दूसरी बात, ये माल दौलत के अंदर एक बहुत बड़ी कमी की बात ये है कि ये अपने हाथ से निकल जाएगा तब अपनी जरूरत पूरी करेगा। बहुत ध्यान से पॉइंट समझो, जब ये माल दौलत अपने हाथ से निकल जाएगा तो हमारी जरूरत पूरी करेगा। देखो, हमारा एक दोस्त है, वो हमारे साथ होगा तो हमको मदद करेगा। हमारा बेटा है, हमारे साथ है तो हमारी खिदमत करेगा। लेकिन ये माल दौलत कैसा है, हमारे पास से दूर हो जावे, चला जावे तो हमारी जरूरत पूरी करे। जब तक पैसे आपके जेब में है, वहां तक आपकी जरूरत पूरी नहीं करेगा। पैसे को जेब से निकाल के सब्जी वाले को दो तो सब्जी आएगी और जरूरत पूरी होगी। पैसे जेब से निकाल के चावल वाले को दो तो चावल आएंगे और जरूरत पूरी होगी। गरज ये कि ये दौलत अपने पास से चली जावे तो जरूरत पूरी होवे, वहां तक जरूरत पूरी ही नहीं होवे। इसलिए बाज बुजुर्गाने दीन ने एक अजीब किस्सा बयान फरमाया। पुराने जमाने में बैंक वगैरह नहीं होती थी, तो लोग जो है ने घरों के नीचे तहखाने बनाते थे, भूइरे, बेसमेंट, उसके अंदर पैसे छुपा के रखते थे। एक आदमी था, उसके पास बहुत माल था, सोना भी, चांदी भी, हीरे भी, बहुत था। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने यह किस्सा लिखा है। उसने अपने घर के नीचे एक भूइरा बनवाया और उसका एक दरवाजा था, उसके ऊपर लॉक वॉक की कोई सिस्टम थी, और लॉक भी अजीब था कि उसी को मालूम था, किसी को आता नहीं था। एक मर्तबा वो अपने भोईरे में गया, तहखाने में गया खजाना देखने के लिए। और देखो, ये तो हम सब समझते हैं कि आदमी के पास पैसे होते हैं ना तो उसको गिनने का शौक होता है, गिनने में मजा आता है, गिनने से दिल खुश होता है। तो आदमी कभी, चलो आज पैसे गिने, टोटल मेरे पास कितने हैं, हाथ में कितने, बैंक में कितने, इन्वेस्ट में कितने, डब्बे में कितने, गल्ले में कितने, तो गिनने में लग गया। काफी देर, थोड़ा वक्त हो गया तो उसको भूख लगी, तो सोचा कि चलो भोईरे में से, तहखाने से बाहर जाऊं। लेकिन दरवाजे का लॉक खराब हो गया, दरवाजा खुला नहीं। अब अंदर अंदर वो चिल्ला रहा है घर वालों को, लेकिन किसी को मालूम नहीं कि वो अंदर गया हुआ है। अंदर सोना है, चांदी है, हीरे हैं, मोती है, लेकिन भूख लगी है तो वो काम नहीं आता, प्यास लगी है, प्यास नहीं बुझाता, और वो बेचारा अंदर तड़प तड़प करके मर के खत्म हो गया। देखो, ये है ये माल का हाल। इसीलिए कभी इस माल से दिल मत लगाना, ये तो बहुत बेकार चीज है। बस जरूरत पूरी हो जाए दुनिया की, आखिरत की बैंक में जमा हो जाए, काफी है, बहुत कुछ है। तो कयामत के दिन जब जमीन के अंदर से सारे खजाने निकलेंगे, वा खराजातिल अर्दु अथकालहा वा कालल इंसानु मालहा, इंसान कहेगा इस जमीन को क्या हो गया। यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, ये जमीन उस दिन बोलेगी जो कुछ उसके ऊपर हुआ, जितने काम जमीन पर हुए, जितनी बातें जमीन पर हुई, सब जमीन बोलेगी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला इस जमीन को आज गूंगी है, आज खामोश है, आज ये जमीन कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप है। लेकिन कयामत के दिन ये जमीन बोलेगी, याद रख लो, ये कुरान फरमाते, अल्लाह फरमाते हैं। और आप सोचेंगे भाई जमीन कैसे बोलेगी, वो अल्लाह की कुदरत, हमारे बदन के अंदर जबान है ना, ये जबान भी अल्लाह की मर्जी से बोलती है ना। जबान की कोई जबान है जिससे वो बोले? नहीं, ये जबान अल्लाह की कुदरत से बोलती है। ये जो गूंगे लोग होते हैं ना, उनका मुंह खोल के देखना, उनके मुंह में भी जुबान होती है, हमारे जैसी ही जुबान होती है, और गूंगों के मुंह में भी हमारे जैसे ही 32 दांत होते हैं, उनके भी हमारे जैसे 2 जबड़े होते हैं, सेम टू सेम हमारे जैसा उनका मुंह जुबान दांत होते हैं, लेकिन उनकी जबान बोलती नहीं, वो बेचारे गूंगे हैं। क्या मालूम हुआ कि जबान, टंग, जीभ, ये जो बोलती है ये अल्लाह की मर्जी से बोलती है। अल्लाह चाहे तो जबान बोले, अल्लाह न चाहे तो जबान न बोले। हमारी जबान बोलती है अल्लाह का एहसान, गूंगों की जबान नहीं बोलती है अल्लाह ताला का फैसला। और बहुत सारे इंसान कि जिनकी जुबान अच्छी होती है लेकिन एकदम बोलना बंद हो जाता है, देखो भाई ये अल्लाह की कुदरत की बात है। तो बोलने के लिए जबान भी अल्लाह के फैसले की मोहताज है, जबान के अंदर खुद में कोई ताकत नहीं है। तो आज जो अल्लाह ताला ने जमीन को गूंगा बनाया वो कयामत के दिन बोलेगी। और ये तो हदीस में कि रोजाना कब्र की मिट्टी ऐलान करती है कि मैं कीड़े मकोड़े का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, ये रोज कब्र की मिट्टी ऐलान करती है। तो जमीन भी बोलेगी कयामत के दिन, अल्लाह ताला बुलवाएंगे। गोया के जमीन अल्लाह की CID है। आज CID वालों से, CBI वालों से लोग डरते हैं, लेकिन जमीन से नहीं डरते। ये जमीन भी अल्लाह की CID है। इंसान दुनिया में कहीं भी जाकर के कोई गुनाह का काम करे, जमीन तो देखती है। तो ये जमीन कयामत के दिन बोलेगी कि किसने जमीन पर कौन सा काम किया, अच्छा किया, बुरा किया, अच्छी बात बोली, गलत बात बोली, सब जमीन बोलेगी। और देखो भाई, दुनिया के ये जमीन गोया अल्लाह ताला के सामने गवाही देगी कि अल्लाह इसने मेरे ऊपर नमाज पढ़ी थी, अल्लाह इसने मेरे ऊपर तस्बीह पढ़ी थी, अल्लाह इसने मेरे ऊपर गाने गाए थे, अल्लाह इसने मेरे ऊपर चोरी की थी। पूरी दुनिया में जमीन ही जमीन है जहाँ इंसान जाता है, और पानी के नीचे भी जमीन है। तो ये जमीन कयामत के दिन बोलेगी। अब दुनिया के अंदर कोई किसी के खिलाफ गवाही देता है, कोई साक्षी बनता है, ताज का साक्षी के बगैर ताज का साक्षी गवाही देता है, तो बाज मरतबा गवाही जो झूठी और गलत देता है वो दुश्मनी में देता है। बाज मरतबा किसी का दबाव होता है और जबरदस्ती में कोई आदमी झूठी गवाही देता है। तो गलत और झूठी गवाही देने के ये 2 रीजन है, 2 कारण है, 2 वजह है। एक दुश्मनी में झूठी गवाही, और दूसरा ये है कि किसी के दबाव में, जबरदस्ती में झूठी गवाही। अब सोचो कि जमीन को हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि इस जमीन को तो हमारी गुजराती में मातृभूमि कहा जाता है, मातृभूमि का तन मन सारा, ऐसा गीतरी में भी बोलते हैं। तो ये तो मातृभूमि, मातृ के माने अम्मा, तो ये जमीन को तो अम्मा के साथ, अपनी माँ के साथ गोया के तशबीह दी गई, उसके जैसा बतलाया गया। और हकीकत भी कुछ ऐसी ही है कि इंसान मिट्टी से पैदा हुआ, इसीलिए मिट्टी और इंसान के दरमियान में माँ बेटे जैसा एक ताल्लुक है। इंसान की पैदाइश अल्लाह ने मिट्टी से की, इसीलिए इंसान और मिट्टी में माँ बेटे जैसा एक ताल्लुक है एक एतबार से। लिहाजा जमीन को हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं कि वो हमारे खिलाफ गवाही देवे, हमारे खिलाफ साक्षी देवे, ये हो ही नहीं सकता। बस ये कि अल्लाह सुबहानहू व ताला का हुक्म है कि जमीन हमारे खिलाफ गवाही क्यों देगी। يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. اللہ تعالیٰ نے زمین کو آرڈر دیا کہ اے زمین تو بول تیرے اوپر کیا کیا کام ہوئے تھے، کیا کیا عمل ہوئے تھے، سب تو بول، لہذا زمین بولنا شروع کر دے گی. دیکھو آج ہمارا ہاتھ ہے، ہمارے پیر ہے، آج سب دنیا میں گونگے ہیں نا، خاموش، لیکن کہیں قیامت کے دن یہ بھی بولیں گے تو انسان کیا کہے گا؟ لما شہدتم علینا قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء. قیامت کے دن ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، کان بولیں گے، آنکھ بولے گی، پوری باڈی بولے گی، جو گناہ کیے، جو اچھے کام کیے، سب بولے گی. تو پھر انسان اپنی باڈی کو کہے گا، اپنے باڈی کے الگ الگ حصے کو کہے گا، بدن کے الگ الگ حصے کو کہے گا، تم لوگ کیوں بولتے ہو؟ تو زبان کو کہیں گے، انسان کو کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بولنے کا حکم دیا. اسی لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے اور زمین بولنا شروع کر دے گی. اس کی ایک آسان مثال یہ ریکارڈر ہے. دیکھو یہ ریکارڈر جب ریکارڈنگ کرتا ہے نا تو چپ چاپ ریکارڈنگ کرتا ہے، پھر جب اس کے دوسرے بٹن کو دباؤ تو بولنا چالو کرتا ہے. تو سمجھو کہ ابھی زمین ساری چیز کا ریکارڈنگ کر رہی ہے، ویڈیو ریکارڈنگ، آڈیو ریکارڈنگ، سب ریکارڈنگ یہ زمین ابھی کر رہی ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا دوسرا بٹن دبائیں گے تو یہ سب بولنا چالو کر دے گی، دکھلانا چالو کر دے گی، اور اللہ کے دربار میں گواہ بنے گی، ساکشی بنے گی، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بتلا دے گی. اسی لیے بعض اللہ والے یوں فرماتے ہیں کہ یاد کرو تم نے زمین کی کس جگہ پر گناہ کیا، وہاں جا کر کے ایک مرتبہ توبہ بھی کر کے آ جاؤ. کسی بھی جگہ دنیا میں تم نے گناہ کیا تو وہاں جا کر کے توبہ بھی کر کے آ جاؤ. جیسے دریا کنارے کے اوپر جا کے گناہ کیا تو کسی موقع پر جا کر کے وہاں سچی پکی توبہ کر کے توبہ کی نماز پڑھ کے آ جاؤ. کسی ہل اسٹیشن پر گئے، گھومنے پھرنے کی جگہ گئے، کسی ہوٹل میں گئے، وہاں جا کے گناہ کیا تو اب وہاں جا کر کے دو رکعت نماز پڑھ کے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کے بھی آؤ، تاکہ وہ ریکارڈ مٹ جاوے، وہ ریکارڈ ختم ہو جاوے. تو یہ زمین گواہی دے گی اللہ کے سامنے کہ کیا کس نے کیا تھا. یہ میدان قیامت میں ہونے والا ہے. قیامت کا دن بہت لمبا بھی ہے اور بہت چوڑا بھی ہے. آپ اندازہ لگاؤ کہ قرآن کی ایک آیت میں اس کو 1000 سال کا دن بتلایا گیا. آج تو 24 گھنٹے کا دن ہے دنیا میں، لیکن قیامت کا دن 1000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. دوسری جگہ فرمایا کہ دنیا کے 50,000 سال کے برابر قیامت کا ایک دن ہوگا. تو قیامت کا دن لمبا بھی بہت ہے اور قیامت کا دن چوڑا بھی بہت ہے. اس لیے قیامت کے دن زمین تمام انسانوں کی رپورٹ بتلائے گی، تمام انسانوں کی خبر دے گی. اتنا ٹائم اس کو مل جائے گا، ٹائم کم نہیں پڑے گا. دنیا کے اندر تو بہت سے کاموں کے لیے بعض مرتبہ ٹائم کم پڑتا ہے، لیکن قیامت کے دن ایک دن تقریباً 50,000 سال کے برابر کا. اسی لیے ٹائم بھی کم نہیں پڑے گا اور زمین کو پورا ٹائم ملے گا پوری بات بیان کرنے کے واسطے. اب قیامت کے دن سب الگ الگ گروپ ہوں گے، الگ الگ جماعتیں ہوگی، الگ الگ جو ہے وفد ہوں گے. نماز والوں کا گروپ الگ، सदका खैरात करने वालों का ग्रुप अलग, रोजा रखने वालों का ग्रुप अलग, चोरी करने वालों का ग्रुप अलग, जीना करने वालों का ग्रुप अलग, शराब पीने वालों का ग्रुप अलग, सब ग्रुप कयामत के दिन अलग अलग होंगे। अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گنہگارو سب تم الگ الگ ہو جاؤ، جدا جدا گروپ میں ہو جاؤ، سب گنہگار الگ الگ گروپ کے اندر ہوں گے۔ یاد رکھو دنیا میں انسان بالغ ہوتا ہے، شریعت کے احکام اس کے ذمے آ جاتے ہیں، تو بالغ ہونے سے لے کر کے موت تک پورا اس کا ڈیٹا اس کے اعمال نامے کے اندر موجود ہے۔ بالغ ہونے سے لے کر موت تک کی زندگی پورے پوری فرشتوں نے لکھ کر کے رکھی ہے، اور جب انسان اس کو دیکھے گا تو سب چیز اس کو یاد آ جائے گی۔ دنیا کے اندر انسان کوئی کام کرتا ہے، پھر اس کام کو بھول جاتا ہے، لیکن جب وہ بات سامنے آتی ہے تو پھر یاد آ جاتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری مرتبہ ہم کوئی بات کر کے لکھ کے بھول جاتے ہیں، لیکن جب وہ لکھی ہوئی چیز سامنے آتی ہے تو آدمی کو یاد آ جاتا ہے۔ قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ انسان نے دنیا میں جو کچھ کیا انسان سب بھول گیا، لیکن وہ تمام کی تمام چیزیں جو اعمال نامے میں موجود ہے، جیسے ہی وہ سامنے آئے گی سب چیزیں جو ہے انسان کو یاد آ جائے گی۔ ایسا عجیب منظر اس قیامت کے دن کے اندر ہوگا۔ اب یہ تمام انسان جو قیامت کے میدان کے اندر آئیں گے، تو میدان میں آنے کی کیا ترتیب ہوگی؟ قبر سے نکل کر کے قیامت کے میدان میں کیسے جائیں گے؟ تو پہلا طریقہ یہ ہوگا کہ بہت سارے انسان پیدل چل کر، پاؤں سے چل کر کے قیامت کے میدان میں آئیں گے۔ قبر سے نکلے، چلنے لگے اور چل کر کے قیامت کے میدان کے اندر پہنچ گئے۔ نمبر دو، بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالی سواری دیں گے، بہترین سواری ہوگی، خوبصورت سواری ہوگی، یعنی دنیا میں جو اچھے اعمال کیے وہ اچھے اعمال ان کے لیے گاڑی بن جائے گی۔ اب وہ سواری کوئی جانور کی طرح ہوگی، جیسے گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، یا کار کی طرح ہوگی، کوئی بھی سواری ہوگی کہ انسان قبر سے نکل کر کے اپنے نیک عمل کی سواری کے اوپر بیٹھ کر کے قیامت کے میدان میں جائے گا۔ اور نمبر تین، اللہ حفاظت میں رکھے تیسرے نمبر سے، بہت سارے لوگ اپنے منہ کے اوپر، اپنے چہرے کے اوپر گھسٹ گھسٹ کر کے قیامت کے میدان میں جائیں گے۔ آج لوگ پیر سے چلتے ہیں، جن کے پیر کٹے ہوتے ہیں وہ سورین کے اوپر گھسٹ گھسٹ کر کے چلتے ہیں، تو قیامت کے دن بہت سارے لوگ اپنے منہ کے اوپر گھسٹ گھسٹ کر کے قیامت کے میدان میں جائیں گے۔ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ उम्यं व बुकमं व सुम्मा। हम उनको कयामत के दिन जमा करेंगे चेहरे के ऊपर, घिसट कर आएंगे, अंधे होंगे, गूंगे होंगे, बेरे होंगे। एक मर्तबा एक साहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि काफिर को अल्लाह ताला कयामत के मैदान में सर के ऊपर घिसट घिसट करके लाएंगे, तो सर के ऊपर चेहरे के ऊपर कैसे चलेगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह ताला पांव पर पैर पर चलाते हैं उसी अल्लाह ताला को पूरी ताकत है कि वो अल्लाह ताला सर के ऊपर भी चलाएंगे। अल्लाह ताला हमको खूबसूरत सवारियों के ऊपर मैदान कयामत के अंदर अपने फजल और करम से पहुंचा दे रहे। और हालत ये होगी कि लोगों की आंखें खुली होगी, फटी हुई आंखें होगी और पसीना होगा गुनाह की जितना, जितने गुनाह इतना पसीना होगा। चप्पल नहीं, बदन पर कपड़ा नहीं, इस हाल के अंदर फुफातन और आतन और अलन कयामत के मैदान में आएंगे। देखो भाई, कब्र से निकलते ही तकलीफ शुरू हो जाएगी। अभी तो जहन्नम आई भी नहीं, अभी तो कयामत के मैदान में पहुंचे भी नहीं, कब्र से निकले, सूर फूंका गया, कयामत का दिन आ गया, तकलीफ शुरू हो जाएगी। और ऐसी तकलीफ होगी कि लोग जो है हैरान परेशान। एक पुकारने वाला फरिश्ता जो आवाज दे रहा होगा, उसकी आवाज की तरफ लोग दौड़ेंगे, उनके चेहरे ऊपर उठे हुए होंगे और आंखें पलट कर नहीं आएगी, फटी की फटी रह जाएगी और कलेजे अजीब हालत के अंदर हो जाएंगे। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तश्खसु फीहि अलअबसार مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء। अब कयामत के मैदान के अंदर आ गए। क्यों आए भाई कयामत के मैदान के अंदर? आने का मकसद क्या? अल्लाह ताला ने इस सूरत में फरमाया, يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم। अपने आमाल देखने के लिए आएंगे, उनको उनके आमाल दिखाए जाएंगे, हर एक इंसान को उनके आमाल दिखाए जाएंगे। आमाल कैसे दिखाए जाएंगे? पूरी जिंदगी के अंदर जो बात बोली, जो काम किए, वो फरिश्तों ने लिख के रखे हैं और वो लोगों को दिखला दिए जाएंगे और कहा जाएगा, इकरा किताबक कफा बिनफ्सिक अल्यौम अलैक हसीबा। अपनी जिंदगी का डेटा, अपनी जिंदगी की पूरी रिपोर्ट खुद पढ़ो, खुद देखो, खुद हिसाब करो। और देखने का दूसरा मतलब ये है कि अपने अमल का अंजाम देख लिएंगे, अपने अमल का अंजाम उनको दिखाया जाएगा। जैसे कि हम भी अपने आपस में बोलचाल में बोलते हैं ने कि अब मैं तुझे दिखाता हूँ, तू जो है बहुत तूफान मस्ती करता है, अब मैं तुझे दिखाता हूँ। तो दिखाने का मतलब है तूफान मस्ती की सजा देता हूँ। तो इस तरह कयामत के दिन लोगों को उनके आमाल का बदला अल्लाह ताला की तरफ से दिखाया जाएगा। नेक अमल का नेक बदला, बुरे अमल का बुरा बदला अल्लाह की तरफ से दिखाया जाएगा और नेक लोग, अल्लाहु अकबर, अल्लाह हमको उस जमात में अपने करम से शामिल फरमा देवे, मलाइका फरिश्ते उनको वेलकम करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे। खुद कुरान में वततलक्काहुमुल मलाइका, जब ये नेक लोग कयामत के मैदान में पहुंचेंगे तो फरिश्ते इनको वेलकम करेंगे। कितनी अजीब बात फरमा दी कुरान के अंदर अल्लाह ने। इसीलिए हमारे दीनी भाइयों, अपने हाथ में है कौन से ग्रुप में अपना नाम लिखवाना है। हाँ, दो ग्रुप होंगे, नेक आमाल वाला ग्रुप और गुनाह वाला ग्रुप। कौन से आमाल कौन से ग्रुप में जाना है वो खुद फैसला कर लो, खुद डिसीजन ले लो। दुनिया में तोबा करे, गुनाह से बचे, नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, सदका करे, खैरात करे, अच्छे काम करे, बुरे बात से रोके, वो अच्छे काम की दावत देवे, तो लोग अच्छे ग्रुप के अंदर होंगे, जन्नतियों वाले ग्रुप के अंदर होंगे। अल्लाह उस ग्रुप में हम सबको अपने फजल से बना देवे। और दूसरा ग्रुप गुनहगारों का होगा, नाफरमानों का होगा। अल्लाह उस ग्रुप के मेंबर बनने से अल्लाह ताला हिफाजत फरमावे। फिर क्या होगा, फमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। आयत में जर्रा आया, जर्रा, ये हम अपनी उर्दू में भी बोलते हैं, गुजराती में भी बोलते हैं। गुजराती में जरा बिगाड़ के बोलते हैं जराक, जरा सा उर्दू में बोलते हैं, यही जर्रा है अरबी जबान में, करीब करीब है सभी ये लफ्ज। जर्रा किसको कहते हैं, जब धूप निकलती है, तड़का निकलता है और छोटा सा सुराख होता है, तो छोटे से सुराख के अंदर से जब धूप घर में आती है तो उस धूप की रोशनी में छोटे 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 जर्रे हमको उड़ते हुए नजर आते हैं, उसी को जर्रा कहा जाता है। उसको तुम हाथ लगाओ तो हाथ पे कुछ लगेगा नहीं, लेकिन बस आंख से उड़ते हुए नजर आते हैं वो जो बिल्कुल छोटे बारीक धूप और तड़के की रोशनी और लाइट में जो उड़ते हुए नजर आते हैं, उसका नाम है जर्रा। और छोटी छोटी जो चींटियां होती है, कीड़ी, पीले पीले रंग की, उसको भी अरबी में जर्रा कहते हैं। और वो जो छोटी सी चींटी होती है ना, उसका कोई वजन नहीं होता। रोटी का एक टुकड़ा गुड़ लगा करके रख दो तराजू में और उसका वजन कर लो, चलो 50 ग्राम वजन हुआ गुड़ वाली रोटी का। फिर उसको कहीं रख दी, अब उसके ऊपर बहुत सारी चींटियां जमा हो जाए, कीड़ियां जमा हो जाए, तो कीड़ी के साथ वजन करो, तो भी वजन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बस ऐसे छोटे छोटे जर्रे, वो भी कीड़ी बारीक, तो कयामत के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि कयामत के दिन जिंदगी में जो छोटी नेकियां की वो भी आदमी के सामने आएगी और जो बड़ी नेकियां की वो भी सामने आएगी। छोटे गुनाह भी सामने, बड़े गुनाह भी सामने, सब कुछ सामने होगा। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اِقْرَأْ كِتَابَكَ। सब के आमाल के चौपड़े, दफ्तर सामने आ जाएंगे, नोटबुक के सामने आ जाएगी जो फरिश्तों ने लिखी, और अल्लाह फरमाएंगे अपना आमाल नामा, अपनी नोटबुक जिंदगी की खुद तू पढ़ ले। जिसने दुनिया के अंदर लिखना पढ़ना सीखा वो भी पढ़ेगा, जो अभण था जाहिल था जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता था वो भी लिखना पढ़ना शुरू कर देगा, ऐसा वो कयामत का दिन होगा। सब चीज आदमी फटाफट लिखेगा पढ़ेगा, अरे पढ़ना शुरू कर देगा, वाचना शुरू करेगा, रीडिंग शुरू कर देगा। तो फमैयामल मिसकाल जर्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिसकाल जर्रतिन शर्रन यरा। इसीलिए प्यारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहकिरन मिनल मारूफी शैआ, किसी भी नेक काम को छोटा मत समझो। कितना भी छोटा सा नेक अमल हो उसको छोटा और मामूली मत समझो। बाज मर्तबा छोटा सा अमल जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाता है। सुभान अल्लाह। हदीस आपने सुनी, एक कुत्ते को पानी पिलाने से जन्नत मिल गई। हाँ, कुत्ते को पानी पिलाया जन्नत मिल गई, और बिल्ली को बांध के रखा खाना पीना नहीं दिया तो जहन्नम मिली। किसी छोटे नेक काम को छोटा मत समझो और किसी छोटे गुनाह को मामूली मत समझो। हजरत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, इतने बड़े हदीस के इमाम, लेकिन जन्नत कैसे मिल गई? छींक का जवाब देने पर जन्नत मिल गई। छींक का जवाब, छींक का जवाब देने के लिए कश्ती में बैठे, किनारे पर गए, जन्नत मिल गई। एक कश्ती में बैठ करके जा रहे थे, किसी ने किनारे के ऊपर छींक खाई, अल्हम्दुलिल्लाह कहा। हजरत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने वो स्टीमर वालों के पास कश्ती किराए पर मांगी। बड़ी स्टीमर चलती है तो उसमें छोटी छोटी बोट भी होती इमरजेंसी के लिए। पूछा, ये छोटी बोट कितने के अंदर किराए में मिलेगी? तो कहा 3 दिरहम में। 3 दिरहम में वो छोटी बोट किराए पर ली, किनारे पर गए, उस आदमी को छींक का जवाब दिया, यरहमुकल्लाह। और उसने जवाब में कहा, यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। ये है पूरी सुन्नत, सीख लो। छींक खाते वक्त कहो अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये तो छींक खाने वाला बोले, इसीलिए कि छींक आना ये बीमारी से शिफा की निशानी है। कि अंदर शुर्राए हदीस लिखते हैं कि बीमारी के और तंदुरुस्ती के जो जरासीम है, जम्स है, उसमें जब तंदुरुस्ती के जरासीम और जम्स जीत जाते हैं तो छींक आती है। तो उस पर कहो अल्हम्दुलिल्लाह, और सुनने वाला कहवे यरहमुकल्लाह, और औरत होवे तो कहवे यरहमुकिल्लाह। फिर छींक खाने वाला कहवे यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम, अल्लाह तुमको हिदायत देवे, तुम्हारे हालात दुरुस्त कर देवे। इमाम अबू दाऊद ने जाके छींक का जवाब दिया, फिर बड़ी स्टीमर में आ गए। रात के वक्त गैप से आवाज आई, या एक इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, तो कहने वाले ने कहा, अन्न अबा दाऊद इश्तरल जन्नत बिसलासति दराहिम, अबू दाऊद ने 3 दिरहम में अल्लाह की जन्नत को खरीद लिया। इसीलिए कि 3 दिरहम में उन्होंने छोटी सी होड़ी भाड़े ली और किनारे पर गए और छींक का जवाब देकर के आए, तो 3 दिरहम के अंदर छोटी सी सुन्नत अदा करने पर अल्लाह ने जन्नत अदा फरमा दी। सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी अल्लाह ताला की शान, कितनी बड़ी अल्लाह की मेहरबानी। इसीलिए किसी छोटे से नेकी के काम को मामूली मत समझो। अल्लाह ताला को कोई छोटी नेकी पसंद आवे और उस पर जन्नत दे देवे, और किसी छोटे गुनाह को मामूली मत समझो। کہ اس کے اوپر جہنم مل جاوے. جیسے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے بتلایا ہے نا وہ واقعہ آبیتی میں کہ وہ ایک صاحب جا رہے تھے, پان کھا رکھا تھا اور پان کھانے والے ادھر ادھر پچکاریاں مارتے پھرتے ہیں, کتنا گوجواڑا اور گندگی کرتے ہیں. تو گدھا مل گیا راستے میں, دھوریٹی کا دن تھا تو گدھے کے اوپر پچکاری ماری پان کی اور زبان سے یوں بولا کہ ارے ارے تجھے کسی نے رنگا نہیں, چل میں تجھے رنگ دیتا ہوں. یہ کہہ کر پچکاری مار دی گدھے کے اوپر. بس دیکھو کتنا چھوٹی سی معمولی غلطی اور بھول ہو گئی, پچکاری مارنی تھی گدھے پہ ماری اور یوں بول کے ماری کہ تجھے کسی نے رنگا نہیں آج بریٹی میں, یہ کہہ کر پچکاری مار دی. انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا, قبر کے اندر جنت کا بستر ہے, جنت کے پھول ہے, جنت کی راحتیں ہیں, لیکن ہونٹوں کے اوپر سانپولیا ہے, سانپ کا بچہ ہے جو پریشان کرتا ہے, کاٹتا رہتا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھائی حضرت یہ کیسے ہو گیا, تو کہا وہ جو چھوٹی سی ایک غلط بات بولی تھی پچکاری مارتے وقت پر, اس کی وجہ سے قبر میں یہ سزا ہو گئی. اسی لیے کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو, ہر نیکی چھوٹی بڑی کرو, کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو, چھوڑ دو گناہ کو. تو فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. اسی لیے زندگی کے اندر دیکھو ایک اہم مسئلہ یہاں پر ایک اور سمجھو, ہر چھوٹی بڑی نیکی گناہ موجود ہوگا, اس کا مطلب کیا ہے؟ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کی, باقی جس گناہ کو کرنے کے بعد توبہ کر لی انشاءاللہ وہ گناہ اعمال نامے سے اللہ مٹا دیں گے, نکال دیں گے, اور جو نیکی اخلاص سے کی ہوگی وہ اعمال نامے میں دیکھنے کو ملے گی. ورنہ جو نیکی اخلاص والی نہیں ہے وہ اعمال نامے میں, خیر والے میں, نیکیوں والے میں نظر نہیں آئے گی. اور جو گناہ پر توبہ کر لی وہ گناہ بھی اعمال نامے میں نظر نہیں آئیں گے. ایک حدیث سنو, میں حدیث سناتا ہوں. اذا تاب العبد, جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے, گناہ سے معافی مانگتا ہے, توبہ کرتا ہے, اپنی حالت ٹھیک کر لیتا ہے, تو پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالی فرشتوں کو وہ گناہ بھلا دیتے ہیں. یہ فرشتے جو ہیں نا جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا. تو جو فرشتے ہمارے ساتھ ہے وہ فرشتے قیامت کے دن گواہی دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار کی برکت سے فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں. کتنی بڑی نعمت, اللہ فرشتوں کو بھلا دے. نمبر دو, اس کے بدن کے اعضاء کو بھی اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھلا دیتے ہیں. ورنہ یہ باڈی, ہاتھ پیر, کان, آنکھ, ناک, سب نے گناہ دیکھے ہیں اور وہ قیامت کے دن بولیں گے ہاں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ تعالیٰ نے منہ کے اوپر لاک لگا دیا, مہر لگا دی, اور ہاتھ بولیں گے, پیر بولیں گے, گواہی دیں گے, جو برے کام دنیا میں کیے سب کی گواہی دیں گے, साक्षी बनेंगे, रिकॉर्ड बतलाएंगे। लेकिन अगर तोबा कर ली तो ये बदन के आज़ा को भी अल्लाह भुला देंगे, हाथ को भी भुला देंगे, पैर को भी भुला देंगे, पूरी बॉडी को अल्लाह ताला भुला देंगे। कितनी बड़ी मेहरबानी अल्लाह की। नंबर तीन, जिस जमीन पर गुनाह किया था अल्लाह उस जमीन को भी भुला देंगे और जमीन पर से भी गुनाह की निशानियां अल्लाह ताला मिटा देंगे। तो ये जो आयत बतलाई, यौम इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, तो याद रखो जमीन एक एक गुनाह की, हर हर गुनाह की गवाही देगी। लेकिन जब गुनाह पर बंदा तोबा कर लेता है, माफी मांग लेता है, तो अल्लाह ताला वो गुनाह जमीन के ऊपर से मिटा देंगे, भुला देंगे। यहाँ तक के अल्लाह ताला के सामने जब बंदा हाजिर होगा तो कोई गवाह नहीं होगा, गुनाह को कोई बतलाने वाला नहीं होगा और अल्लाह उसको बख्शा बख्शाया जन्नत में भेज देंगे। इसीलिए जितने गुनाह हुए, जितनी बुराइयां हुई, जितनी नाफरमानियां हुई, उसके ऊपर तौबा कर लो तो इंशाअल्लाह वो गुनाह मिट जाएंगे, वरना वो गुनाह रिकॉर्ड में मौजूद होंगे। और इसी निस्बत से एक और बात समझ लो, सब कहो सुभान अल्लाह, सब कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने मेरे और आपके दिल में अपने करम और फजल से ईमान रखा है। अल्लाहु अकबर। अब अल्लाह से दो दुआ मांगो। पहली दुआ क्या है, فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين। اے اللہ ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ دنیا سے مجھے اٹھانا۔ ایک دعا یہ مانگو اور دوسری دعا ربنا لا تزغ قلوبنا رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ اللہ ایمان اور ہدایت دینے کے بعد اب ہم کو ایمان ہدایت سے ہٹا نہ دینا۔ تو ایمان دل کے اندر ہے، ایمان دل میں موجود ہے، ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو اس کی برکت یہ ظاہر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے جہنم سے نکال دیں گے، جنت میں انشاءاللہ بھیج دیں گے۔ تو جس نے پوری زندگی ایک بھی اچھا کام نہیں کیا، گناہ ہی گناہ کیے، لیکن کفر نہیں کیا، شرک نہیں کیا، ایمان والا تھا، ایک بھی نیک عمل نہیں، گناہ ہی گناہ، تو اللہ تعالیٰ اس ایمان کی برکت سے گناہوں کی معافی کے بعد، گناہوں سے صفائی کے بعد جنت میں داخل فرما دیں گے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے دل کے یقین کے ساتھ زبان سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ دیر سویرے بھی جنت میں بھیج دیں گے۔ جو آدمی زندگی کی آخری گھڑی تک، موت آنے تک ایمان پر تھا، اللہ اس کو تمام گناہوں سے صفائی کے بعد ہی جنت میں بھیج دیں گے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری بول کلمہ تھا، جو اخیر تک کلمے پر جمع، اگرچہ بول نہیں سکا آخری وقت میں، لیکن اخیر تک ایمان پر تھا، توحید پر تھا، کلمے پر تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، ذرہ خیر میں ایمان کا ذرہ خیر بھی شامل ہے کہ جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہے، کفر شرک سے بچا ہوا ہے، چاہے زندگی میں ایک بھی نیک عمل نہیں کیا، تقدیر سویرے بھی اللہ جنت میں بھیج دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے, جب دنیا سے جانے کی باری آئے ایمان کے اوپر اس نے خاتمہ عطا فرمائے. اللہ ہمیشہ کفر شرک ارتداد نفاق شقاق سے بچا کے رکھے. اللہ ہمیں خوب اعمال صالحہ کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو جنتی سواریاں عطا فرمائے.